शुद्धात्मने नमः। जम जस्य जम्मि देशे येन विहानेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदम् जम्मं वा अहवमरणं वा संतस्त सम्मि देशे तेन विहानेन सम्मि कालम्मि कोशकरिवारे दुम् इन्दो वा सहजिनिन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानदि दौवाणि सौवपश्चाये सो सद्दिष्ठि सुप्तो जो संकदितो कोतिथि। क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन डॉक्टर हुकुमचंद भारवी द्वारा लिखित पुस्तक के आधार से जो जैन दर्शन का जो महान सिद्धांत है, क्रमबद्ध पर्याय कहो या क्रम नियमित पर्याय कहो, जो वस्तु की व्यवस्था है कि द्रव्य में जो अनादि अनंत पर्याय होती है, पर समय एक एक पर्याय होती रहती है, तो वो सारा अनादि अनंत जो प्रवाह है पर्यायों का, वो एक एक पर्याय का निश्चित क्रम, वो क्रम से होती है और जो होने योग्य है, जैसी योग्यता उस द्रव्य में ही पड़ी है, उस होने योग्य पर्याय ही होगी। अन्य पर्याय अपना क्रम छोड़कर या अपना स्वरूप छोड़कर अन्य प्रकार से वो पर्याय परिणमित नहीं होगा। तो ये सारा हम अन्य अन्य सिद्धांत भी इस पर से सारे घटित हो गए। पहले तो हम सर्वज्ञता को उसका हेतु यानी क्रमबद्ध पर्याय से सर्वज्ञ को सिद्ध कर सकते हैं और क्रमबद्ध पर्याय समझने के लिए भी सर्वज्ञता का हेतु एक दिया जाता है। पेज नंबर 55 पर हम आए हैं। हिंदी 55 है, गुजराती 51। तीसरा पैराग्राफ। पर्यायों में फेरफार करने की मिथ्या बुद्धि ही अज्ञान है और कर्तावाद है, उसी को कर्तावाद कहा। कर्तृत्व बुद्धि है वहाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ ऐसा जो मिथ्या अभिमान है उसको कहते हैं कर्तावाद। वाद शब्द एकांतवाद को सूचित करता है। वैसे तो नय भी है, कर्तृ नय और अकर्तृ नय, तो कर्तृ नय से आत्मा कर्ता भी अपने विभाव परिणामों का, अपने ज्ञानादि परिणामों का तो कर्ता है ही, परंतु यहाँ कर्तावाद शब्द से क्या सूचित होता है कि ये एकांत कर्तृत्वपना जो है, एकांत कर्तृत्वपने की बुद्धि उसको ये बताता है ये शब्द कर्तावाद। जैसे पहले हमने देखा था कि नियतवाद ऐसा शब्द आता है कि जो लोग सर्वथा यानी एकांत से कि सारे ही कार्य नियति से ही होते हैं, उसमें दूसरे कुछ कारण उसको ख्याल में ही नहीं लेते, पुरुषार्थ स्वभाव निमित्तादि अन्य कार्य सभी सभी कारणों को छोड़कर मात्र निमित्त से, सॉरी निमित्त नहीं, मात्र नियति से ही सारे कार्य होते हैं, नियति ही सब कुछ करने वाली है, ऐसा मानने वाले जो लोग हैं उनकी जो मान्यता है उसको कहते हैं नियतवाद। वैसे यहाँ शब्द आया है कर्तावाद। थर्ड पैराग्राफ पहली लाइन कि पर्यायों में फेरफार करने की जो मिथ्या बुद्धि है, फेरफार कोई भी नहीं कर सकता परंतु वो करने की जो मिथ्या बुद्धि है वो उसी को अज्ञान कहा है। और वो कौन सा अज्ञान है, कौन सा मिथ्यात्व है, तो उसमें कर्तावाद लिखा, ये कर्तावाद है। इसी कर्तावादी अज्ञान का निषेध समय सार के कर्ता कर्म अधिकार और सर्व विशुद्ध अधिकार में पूरी शक्ति से किया गया है। वहाँ वस्तु का सत्य स्वरूप बताकर ये कर्तावाद का निषेध हुआ किया। जैन दर्शन के अकर्तावाद का यही मर्म है। अब यहाँ वाद में एकांत नहीं लेना, यहाँ ये सम्यक एकांत कहना है। तो अकर्तावाद यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर इस जगत का कर्ता नहीं है, हम अन्य द्रव्यों के पुद्गलों के या शरीर के कर्ता नहीं है, ऐसी जो अन्य अन्य जो उसने मिथ्यावाद का खंडन किया है वो इसका अकर्तावाद है। जैन दर्शन का अकर्तावाद मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि कोई तथाकथित ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, यानी अकर्तावाद का अर्थ इतना ही नहीं कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं, इतने पर ही नहीं वो लिमिटेड है, उतना ही उसका स्पैन कम नहीं है, तो पूरे सारे को वो संभालेते कि एक परमाणु क्या एक द्रव्य भी दूसरे द्रव्य का कर्ता है, यानी अकेला ईश्वर कर्ता नहीं इतना ही बताना नहीं है, तो क्या कहते कि उतने ही वो तक सीमित नहीं है, तो क्या है, तो अकर्तावाद का व्यापक अर्थ यह है कि कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता हर्ता धर्ता नहीं है, यानी उसमें वो सारे कॉम्बिनेशन लगाना, एक जीव दूसरे जीव का नहीं, एक जीव पुद्गल का नहीं, धर्म का नहीं, अधर्म का नहीं, आकाश का नहीं, काल का नहीं, फिर अभी एक एक पुद्गल परमाणु अन्य पुद्गल का नहीं, वो सारे कॉम्बिनेशन लगाते रहना, यहाँ तक कि यानी दूसरे का तो दूसरे द्रव्य का तो है ही नहीं, अभी और क्या है उसमें, यहाँ तक कि अपनी भी क्रमनिश्चित पर्यायों में वह किसी प्रकार का फेरफार नहीं कर सकता, ये हुआ अकर्तावाद। पहले हमने कर्ता सिद्ध किया था कि आत्मा अपने ही परिणामों का कर्ता है, प्रत्येक द्रव्य अपने ही परिणामों का कर्ता है, अपने कौन से परिणामों का कर्ता है, तो यो होने योग्य उसी समय होने योग्य परिणामों के कर्ता है, परंतु भविष्य काल में पर्याय कोई होने योग्य है वो हम अब करें उसके लिए वो अकर्ता है, व्यापक यानी उसका पूरा अर्थ फैला हुआ, व्यापक अर्थ यानी उसका पूरा पूरा अर्थ क्या है, ब्रॉडली स्पीकिंग नहीं, उसका पूरा अर्थ ले ले फुल मीनिंग, उसका फुल मीनिंग अगर ख्याल में लेना है यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं इतना ही लोग मानते हैं, वो तो है ही, उसको रूल आउट नहीं किया, वो तो है ही है, परंतु क्या एक द्रव्य भी दूसरे द्रव्य के पर्यायों का कर्ता नहीं है, दूसरे द्रव्य का भी कर्ता नहीं उसके पर्यायों का भी कर्ता नहीं, दूसरी बात इतना ही नहीं कि अपने भी जो क्रमणीय जो निश्चित पर्याय है उनको छोड़कर कोई अन्य पर्याय लाओ, इसलिए आत्मा भी अपने पर्यायों भी उसमें फेरफार करने के लिए समर्थ नहीं है, अपने पर्याय तो करता है वो, अपने पर्याय का कर्ता स्वयं अपना स्वयं वह जीव है, प्रत्येक जीव कहो प्रत्येक द्रव्य कहो वो अपने पर्यायों का कर्ता है, परंतु वही द्रव्य अपने अन्य पर्याय उस पर्याय की जगह लाओ ऐसे उसमें सामर्थ्य नहीं है, तो उसमें वो फेरफार नहीं कर सकता, यद्यपि द्रव्य अपने पर्यायों का कर्ता है तथापि फेरफार करता नहीं है, होने योग्य जो धर्म उस द्रव्य में ही मौजूद है, ऐसा नहीं कि वो द्रव्य नहीं कर रहा है, द्रव्य तो अपने होने योग्य पर्याय कर ही रहा है, परंतु वो छोड़कर कुछ अन्य करना ये क्यों करना चाहता है अन्य, तो ये जो चाह है ना इच्छा है ये उसका विपरीत परिणाम है, क्योंकि द्रव्य में तो ऐसी शक्ति बनी है कि वो अपने एक एक पर्याय का खुद करता हो, और वो हो भी रहा है कर भी रहा है, वो भी भावना है वो भी इच्छा है और वो पर्याय है, वो पर्याय कहाँ से निकली, चारित्र गुण में से, वो चारित्र गुण की वह पर्याय निश्चित थी सम्यक तो होने के पहले, उस जीव को ऐसे राग भाव पहले क्या आते थे कि मैं दुनिया का कुछ चेंज करूँ, अभी क्या भावना हुई कि अरे मुझे में अभी मिथ्यात्व है मैं सम्यक को प्राप्त कर लूँ मैं अपना स्वरूप जानू, तो ये तो क्रमणीय नीति है, और जब सम्यक्त्व प्राप्त होने के पहले उस जीव को ऐसी इच्छा होगी वो स्वयं निर्णय करेगा स्वयं बुद्धिपूर्वक साध्या में आएगा वहाँ एक एक सिद्धांत को वो बराबर सुनकर निश्चित निर्णय करेगा, ये सारे क्रमबद्ध में ही होगा, तो पहले तो उसकी रुचि होगी इच्छा होगी तो ये इच्छाएं भी मिट जाएगी, ये भी जो इच्छा सम्यक को प्राप्त करने की इच्छा है जब निर्णय होने लगता है तो ये ऐसा भी ऐसा हो जाता है कि अरे मेरे सम्यक की पर्याय तो हो जाएगी अपने से, फिर वो इच्छा उसकी नहीं फिर वो शुद्धात्मा के तीव्र लगने लग जाती है, अपने स्वरूप के बारे में चिंतन बढ़ जाता है, ऐसे ऐसी इच्छा हो आती है, अभी जो सम्यक दर्शन हो गया तो उसको फिर क्या होगा, भावना क्या रहेगी, उसको कहते भावना। वो इच्छा विषय कषाय वाली इच्छा नहीं होगा, उसको क्या भावना रहती है कि अभी मैं अधिकाधिक स्थिर होकर अगले गुण स्थानों में मुनि पद कैसे प्राप्त करूं, मैं कब श्रेणी करूं, यानी मैं कैसे अंतरंग में अधिक स्थिर हो जाऊं, क्योंकि जिसमें स्थिर होना है उसको तो वो प्राप्त हो गया, वही मैं हूँ ये उसको अनुभव से सिद्ध भी हो गया, अभी उसी को देखते रहना है और कुछ नहीं करना उसको, यानी मार्ग उसके हाथ में आ गया और मार्ग में गड़बड़ी चलती नहीं ये भी उसने पक्का जान लिया है, तो उसने अपने में वो अपनत्व होता रहता है बस, उसने फिर वो ऐसे भाई वाली या मैं जल्दी जल्दी कर लूँ ऐसी कोई उसमें झिंझलाहट जिसको कहते हैं ना, यानी ऐसा कोई एंग्जायटी या उसके बारे में कोई अकुलता भी नहीं रहती, क्योंकि जिसको प्राप्त करना है अभी अहम जिसने प्राप्त करना था वो तो कर लिया, अभी जिस चीज में उसने अहम किया है चौथे गुणस्थान वाले ने, तो सिद्ध भगवान का अहम किसमें होगा, उसी चीज में जो त्रिकाल एक रूप स्वरूप है जिसने चौथे वाले ने अहम किया, मुनि ने भी उसने ही अहम किया और सिद्ध भगवान ने भी उसी में अहम किया, यानी वो अहम यानी मैं जो है वो मैं तो चेंज होने वाला नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव पूरा अखंड रूप जिसको मैंने स्वीकार कर लिया, अभी वो मैं तो मैं ही रहने वाला हूँ, तो अभी पर्याय तो उसी निश्चित तरह से हो ही, अभी पूरा मैं हाथ में आ गया, अभी पर्याय की क्या चिंता करनी, उस पूरे मैं में प्रवाह पूरा आया ना पर्याय का, उसका क्रम भी आया, यानी उसका क्रम निश्चित करने जाते हैं तो पूरा अपना स्व पकड़ में आ जाता है, तो आ गया अभी क्या करना है, पर्याय तो होने वाली होगी, तो भी उसके लिए भी उसकी चिंता आकुलता झंझट कुछ नहीं रहती। शुरू में प्राथमिक भूमिका में सम्यक होने के पहले या शुरू शुरू जब इस ओर जीव मुड़ता है अभ्यास शुरू करता है तो ऐसे उसमें यानी प्रश्न उठते रहते और ऐसे प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, अब प्रश्न उठते तो पूछा करो, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं कैसा प्रश्न पूछूं, बिल्कुल पूछना। देखो है ना कि द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है तथा फिर फेरफार करता नहीं, अंतिम पैराग्राफ, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा अथवा उक्त अकर्तावादी दृष्टिकोण का एकमात्र सच्चा फल दृष्टि का, वहाँ दृष्टि का हुआ है, दृष्टि का करना, दृष्टि का स्वभाव सम्मुख होना ही है, यानी जिस समय क्रमबद्ध का सच्चा निर्णय होता है उसी समय दृष्टि अपने को प्रकट लेती है, स्वभाव सन्मुख होता है, सन्मुख का अर्थ कल कौन पूछ रहा था, दीपाई, हाँ, यानी अपनी ओर बढ़, ये जो क्योंकि उपयोग वहाँ चला जाता है अपने स्वभाव को पकड़ लेता है, क्रमबद्ध पर्याय की एक ख्याल में है ना, ये तो आर्थिक अर्थ, देखो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा अथवा अकर्तावादी दृष्टिकोण, दृष्टिकोण यानी उसने स्वीकार कर लिया कि जीव यानी मैं, अभी जीव अन्य पुद्गलों की अन्य द्रव्यों की चर्चा नहीं, मैं अन्य किसी का करता नहीं हूँ, अन्य द्रव्य को भी उत्पन्न करता नहीं हूँ, अन्य द्रव्य की पर्यायों को भी उत्पन्न करने वाला नहीं, और मैं अपने ही भविष्यकालीन या भूतकालीन या वर्तमानकालीन किसी भी पर्यायों का फेरफार करने वाला नहीं, मेरी जो अनादि अनंत प्रवाह जो है पर्यायों का वो निश्चित है, वो सारा प्रवाह किसमें, वो तो पूरा द्रव्य स्वभाव ही है ना, तो स्वभाव पर दृष्टि अपने आप जाती है, क्योंकि ये क्रमबद्ध पर्याय एक द्रव्य का स्वभाव है, तो ये पर्यायों का क्रम निश्चित करने जाते हैं तो पर्यायों का पूरा क्रम ख्याल में आता है, तो ये तो यही तो द्रव्य है, द्रव्य और क्या है, अनादि अनंत पर्यायों का पूरा प्रवाह है, यही तो द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य अपनी एक एक अवस्था में विद्यमान है, कब से कब तक, तो अनादि अनंत, यानी पूरा द्रव्य हमने पकड़ लिया तो पूरा द्रव्य स्वभाव पकड़ लिया, एक एक पर्याय की ओर देखते हैं तब विकल्प आता है कि ये पर्याय कब हटेगी, हम समय दर्शन कब प्राप्त करेंगे, ये क्यों उठता है, मैंने बोला ना पहले शुरू में ऐसा होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य पर्याय की ओर है, एक एक पर्याय की तरफ देखकर हम कौन सी आगामी पर्याय कब आएगी, कब ये हटेगी, चलाएगा ना, ये इसमें आएगी पद संख्या घर में बात आती, पर्याय का दृष्टि करने से राग उत्पन्न होता है, यानी भेद का दृष्टि, भेद की दृष्टि करने से राग होता है, उससे बंध होता है, उसे व्यवहार कहा है। क्योंकि जो अभेद समझने के लिए पर्याय की चर्चा इसमें क्यों आती है जिनागम में? अगर पर्याय का लक्ष्य छोड़ना ही है तो पर्याय की चर्चा ही क्यों करते हैं? जैसे वैदिक सर्वथा आत्मा आत्मा नित्य है, ऐसा है, ज्ञाता है, दृष्टा है, ये सारी चर्चा करने पर्याय की चर्चा ही है। तो पर्याय की चर्चा ने वो गौण होकर नहीं दी उन्होंने, वो तो सर्वथा एकांत से वो पूरा नित्य ही कुटस्थ ही द्रव्य को मानते, पर्याय की चर्चा मात्र नहीं करते। तो पर्याय नाम की कोई चीज होती है और वो अवस्था एक एक समय में बदलती है, ये कोई उनके दर्शन में बताया नहीं है। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे ना उसी के बारे में, वैदिक में ऐसे उसको सर्वथा कुटस्थ कैसे हंसते थे, वो ऐसे तो बोलते है कि अगला जन्म है, पिछला जन्म है, ऐसा है वैसा, वो तो सारे बोलते हैं, तो उनको तो पता है कि भविष्य भी है वो और वो चेंज भी होता है। इतना सारा समझकर भी वो ऐसा ही मानते कि ये तो जीव है, यानी इस शरीर से इसको जीव कहते हैं और आत्मा नाम की कोई चीज अलग है और वो सर्वथा ज्ञाता दृष्टा है और ऐसा वैसा ऐसा सारा जो हम जो शुद्ध में का हमारा ईश्वर है ना, जिस हमको त्रिकाली जिसको हम स्वरूप बताते हैं, द्रव्य जो नित्य अंश जो बताते हैं, वो तो सर्वथा आत्मा को वैसे बताते हैं और पर्याय को मानते ही नहीं है। तो पर्याय की ओर देख, पर्याय तो है, पहले पर्याय को हम सिद्ध करते हैं। पर्याय का या भेद का सारा वर्णन हम जिनागम में इसलिए कहते कि द्रव्य कैसा है वो हमारे ख्याल में आता है। तो द्रव्य कैसा है तो हर समय अपना एक एक पर्याय रूप से विद्यमान है, तो उसमें एक एक समय में एक एक पर्याय होती रहती है अपनी अपनी। अभी पूरी द्रव्य की मिलकर एक पर्याय कह रही है, वैसे तो अनंत गुणों की अपेक्षा अनंत पर्याय एक साथ विद्यमान है, तो ऐसे भेद भी है परंतु फिर भी द्रव्य की अखंडता कायम है। तो ये पर्याय का पर्याय की ओर जब तक देखेंगे तब तक हमें तो आकुलता होगी, अरे अभी मिथ्या तो सी पर्याय कब छूटेगी, कब समय तो होगा। जिसको समय दृष्टि हो गया वो कहते अभी मैं कब चारित्र धारण करूंगा, चारित्र ने अंतरंग में स्थिरता मेरी कब बढ़ेगी। मुनि की ओर अगर वो ऑफकोर्स जो समय दर्शन होने के बाद उसकी ऐसी आकुलता नहीं होती जैसे मिथ्या प्रवस्था में होती थी, वैसी आकुलता नहीं है, फिर भी उसको भावना तो बार बार होती है कि अरे मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं ये सारे झंझट में इतना सारा होकर भी मैं कहाँ हूँ, ऐसी तो उसको भावना बराबर बनी रहेगी, कब पर्याय की ओर देखता रहेगा। जब अपनी शुद्धात्मा जो त्रिकाली स्वरूप है, अपना स्वभाव है, उसकी ओर जब तक सोचेगा, उसका जब जब विचार करेगा, तो ये राग उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा लगता है? हाँ, प्रॉब्लम अकेले पर्याय को ही हमने आज तक पर्याय मात्र को ही माना, जो त्रिकाली स्वरूप है उसको माना ही नहीं सच्चे दिल से। अगर मानते यानी सही स्वरूप मान जाते तो अपना एकाग्रता हमारे स्वभाव में करने से सम्यक पर्याय उत्पन्न हो जाते हैं। त्रिकाली जो एक रूप स्वभाव है उसमें जब हम एकाग्र हो जाते हैं तो पर्याय सम्यक्व वाली पर्याय उत्पन्न हो जाती है। सम्यक्व वाली पर्याय उत्पन्न हुई फिर अभी स्वभाव का भी ज्ञान है और पर्याय का भी विवेक है, पर्याय भी कौन सी चल रही उसका तो ज्ञान है ना, क्या अकेले स्वभाव को ही जान रहा है? उस समय वाली पर्याय को भी जानेगा कि अपने कौन सी स्टेज है उसका, उसको भान है कि नहीं है, तो उसको कहते प्रमाण ज्ञान। स्वभाव और वर्तमान पर्याय को भी जानेगा तो वो पूरा ज्ञान हो गया उसका। पहले मैंपना स्थापन करने के लिए किसने देखता था कि स्वभाव की ओर, स्वभाव की ओर देखते 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 पहले पर्याय की ओर देखने से पर्याय में ही राग द्वेष की उत्पत्ति होती थी। अब पर्याय ही देखने वाली तो पर्याय ही है, अब पर्याय कहाँ देख रही है, स्वभाव में, और उसने ही अपनत्व उसने स्थापन किया। ऐसे स्थापन करते करते वो पर्याय आगामी जो उत्पन्न होने वाली वो कैसी उत्पन्न हुई, स्वभाव जैसी उत्पन्न हुई, यानी सम्यक्त्व वाली पर्याय उत्पन्न हुई, वितराग पर्याय उत्पन्न हुई। अभी शुरू में आंशिक होगी तो ऐसी पर्याय उत्पन्न हुई तो उसके लिए क्या किया, अकेले स्वभाव की ओर उसने लक्ष्य किया। परंतु जब स्वभाव की ओर लक्ष्य किया तो स्वभाव जैसा, यानी वो स्वभाव जैसा है वो पर्याय में भी प्रकट हुआ, तो उसका भी ज्ञान उसके साथ होगा कि नहीं होगा। आत्मानुभव हुआ तो उस समय जो आनंद आया उसकी भी अनुभूति हुई ना उस चीज को, तभी तो पता चला कि अपने को समय दर्शन हुआ। तो यहाँ क्या कहते कि उसका सच्चा फल क्या है कि दृष्टि का स्वभाव सम्मुख होना, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की ओर दृष्टि नहीं है, स्वभाव की दृष्टि कराती है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय द्रव्य का स्वभाव है और हमारा प्रयोजन अपने द्रव्य से है। हम पुद्गल की पूरी क्रमबद्ध पर्याय कौन कौन सी होगी इसका विचार नहीं कर रहे, अपनी सारी पर्याय क्रमबद्ध हो है ऐसा निश्चय करके उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं, उसकी तरफ से अपना लक्ष्य छूट जाता है और स्वभाव को पकड़ता है, यही तो उसका फल है, यानी सम्यक दर्शन होना यही उसका फल है। तो पर्याय की तरफ देखने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो पर्याय की ओर से निश्चिंत हो जाने के बाद स्वभाव को देखने से सम्यक दर्शन होगा। ये तो फिर पढ़ती इसको, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा अथवा उक्त अकर्तावादी दृष्टिकोण का एकमात्र सच्चा फल दृष्टि का स्वभाव सन्मुख होना ही है। क्रमबद्ध पर्याय की विकल्पात्मक श्रद्धा करने के उपरांत भी, ये विकल्पात्मक श्रद्धा ने अभी उस संबंधी हम जो ज्ञान कर रहे हैं यहाँ, विकल्प में हमने उसको हाँ ये ठीक लगता है ऐसा लगता है ना हमें कि क्रमबद्ध पर्याय ऐसे ऐसा हमने यहाँ शास्त्र में पढ़ा, कभी विकल्पात्मक उसकी श्रद्धा हुई तो उतना होने पर भी यदि दृष्टि स्वभाव सन्मुख हुई नहीं हुई तो समझना चाहिए कि उसे क्रमबद्ध पर्याय की भी विकल्पात्मक श्रद्धा ही है, सच्ची श्रद्धा नहीं। लोग कहते ना अरे हम तो श्रद्धा है, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है, साफ सफे तो हमने ऐसे 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 सब उंगली पर गिनाते उसका स्वरूप बताते, ये सारा वो ज्ञान है उसको विकल्पात्मक श्रद्धा का, यानी वो जैसे बाह्य अन्य चीजों से ज्ञान है, इतिहास का है, भूगोल का है, गणित का है, वैसे इस संबंधी ज्ञान है, परंतु उसको सच्ची श्रद्धा कब कहेंगे, जब दृष्टि स्वभाव सम्मुख होगी, उसी का अर्थ जब जिस समय सम्यक दर्शन होगा उसी समय उसकी सच्ची श्रद्धा हुई, उसको श्रद्धा कहते हैं, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा और दृष्टि का स्वभाव सम्मुख होकर पर्याय में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने का एक काल है, समय एक है, तो उसी समय हमें सच्ची श्रद्धा हुई, जिस समय हमें सम्यक दर्शन हुआ उसी समय हमारी वो सच्चा श्रद्धा जो है वो सच्ची हुई। पहले तो हमें लगता कि अरे हम तो विश्वास कर रहे हैं देव गुरु शास्त्र का स्वरूप, हमें बराबर निर्णय हमें, परंतु उसे भी निर्णय उसे भी श्रद्धा तभी कहेंगे जिस समय सम्यक दर्शन होगा, यानी जिस समय अपने स्वभाव को पकड़ लेगा, ज्ञान का उपयोग अपने स्वभाव पर केंद्रित होकर उसे स्वरूप से ग्रहण करेगा। श्रद्धा यानी क्या, दृष्टि यानी क्या, कि अहम उसमें स्थापित होगा, स्व में अहम स्थापित होना, उसी को कहते हैं श्रद्धा, उसी को कहते हैं दृष्टि, क्योंकि ज्ञान तो सबको जान रहा है, ज्ञान तो ये जिसको स्व बनाए ना स्व विषय उसको भी जान रहा है और पर को भी जान रहा है, परंतु पर को कैसे जान रहा है यह मैं नहीं, और स्व स्वभाव को कैसे जान रहा है यह मैं हूँ। स्कूल में हम बच्चे को लेने जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे दौड़ के आते हैं, तो हमारा बच्चा देखते हम कहते ये हमारा बच्चा है, परंतु उसी समय जब हम यह हमारा बच्चा है तो उसके आजू बाजू के जो सारे बच्चे हैं जो दिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि हम अन्य बच्चों को देख नहीं रहे, क्योंकि भीड़ तो सारी दिख रही है, फिर भी अपने बच्चे को पहचानते हैं, वो अपना है ऐसा पहचानते हैं, तो वो अपना है और अन्य अपने नहीं उसी में, पर हमारी दृष्टि कहाँ है अपने विषय, दृष्टि का अर्थ ख्याल है, दृष्टि नहीं है अपना है ऐसा जो जो ज्ञान पक्का कर रहा है, उसी समय ज्ञान में तो सारे बच्चे हैं, अपना भी है और सारे भी है अन्य भी, पूरी भीड़ ज्ञान में है, परंतु उसमें अपनापन कहाँ है उस बच्चे में, ऐसे यहाँ दृष्टि जहाँ जब कहा कहते हैं दृष्टि स्वभाव सम्मुख होती है, यानी स्वभाव में अपनापन हो जाता है, और स्वभाव के अन्य जो अन्य चीजें है ज्ञान में आएगी, जैसे प्रमाण ज्ञान है वो सबका निर्णय करेगा, स्वभाव का भी और पर्याय का भी, पर्याय भी ज्ञान में आ रहे स्वभाव भी, परंतु अपनापन कहाँ हुआ स्वभाव में, तब उसको कहते दृष्टि ने स्वभाव को पकड़ा। देखिए क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा और दृष्टि का स्वभाव सम्मुख होकर पर्याय में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने का एक काल है, जब स्वभाव को मैं पने उसने स्वीकार किया, उसी समय उस जो पर्याय है उसमें आनंद की अनुभूति आई। आत्मा के अनंत गुण का जो रस है वो आनंद रूप से उसके ज्ञान के पर्याय में उसने जान लिया, उसको कहते सम्यक दर्शन हुआ। अब अगले 56 पेज तक कुछ लोगों का यह भी कहना है कि गोमत्सार में नियतिवादी को मिथ्या दृष्टि कहा है। गोमत्सार कर्मकांड में आता है कि नियतिवादी मिथ्या दृष्टि है। अब मैंने देखा था ना अकर्तावाद या कर्तावाद, अकर्तावाद तो जैनियों का, वहाँ तो सम्यक बताया, परंतु अन्य जो एकांत से कर्ता बताते हैं कर्तावाद, जैसे यहाँ नियतिवाद है, वह भी एकांत नियत को मानने वाले। यह उनका क्या प्रश्न क्या है, गोमत्सार में तो नियतिवादी को मिथ्या दृष्टि कहा है और आप क्रमबद्ध पर्याय में भी ऐसा ही हो कहते हो कि जो होने वाला है वही होगा, जो होनी है वो टलेगी नहीं, अनहोनी वो होगी नहीं। अन्य जीव भी बोलते हैं और हम भी बोलते हैं, तो हमारे उसमें क्या फर्क है। तो यह क्रमबद्ध पर्याय भी कुछ वैसी ही है, अतः इसमें भी एकांत का दोष आता है, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय में भी वो नियतिवाद की बू आ रही है हमको, ऐसा कहते हैं प्रश्न ऐसा है। पर गोमत्सार के नियतवाद और क्रमबद्ध पर्याय में बहुत अंतर है। एकांत नियतिवादी तो पुरुषार्थादि अन्य समयों समवायों की उपेक्षा कर, पुरुषार्थादि यानी कौन कौन आ गए, हाँ पांचों समय याद है कौन कौन से, हाँ स्वभाव निमित्त पुरुषार्थ हाँ काल लब्धि और ओनहार, ये पांचों। तो उसमें क्या कहते कि एकांत नियतिवादी जो है एकांत नियति से ही जो होनहार होने वाले या जो हमारा जो भवितव्य है वही होगा, ऐसा एकांत से जो मानते हैं वे पुरुषार्थादि अन्य समयवायों की उपेक्षा कर, यानी एक ही समवाय को सर्वथा मानते हैं, अन्य चार समवायों को मानते ही नहीं, पुरुषार्थ स्वभाव सारे को उड़ा देते हैं। एकांत नियतवाद का आश्रय लेकर स्वच्छंदता का पोषण करता है, जैसे जो होने वाला है वो होगा, हम क्यों आए यहाँ, क्यों शास्त्र साध्या करें, क्यों तत्व निर्णय करें, जब होने वाला है और जैसा होने वाला है वैसा ही होगा, तो ये चलो अभी हो गई छुट्टी, छुट्टी कहकर वो विषयों में लीन हो जाता है, वहाँ ऐसा नहीं सोचता जो होने वाला है मिलने वाला है वो मिलेगा, ये छोड़कर दुकान में चला जाएगा, वहाँ ऐसा नहीं सोचता कि जो होने वाला है पैसा मिलने वाला होगा तो होगा, वहाँ तो पूरा पुरुषार्थ लगा लेता है, वहाँ तो पुरुषार्थ की मुख्यता हो जाती है उसके, वो भले ही नहीं कहता है परंतु वहाँ भी जो उसका कार्य हो रहा है वो भी पांचों समवायों सहित हो रहा है। परंतु धर्म के बाबत में क्या अकेला नियतिवाद आगे दिखाता है। एकांत नियतिवादी तो पुरुषार्थ आदि अन्य समवायों की उपेक्षा कर, उपेक्षा ने उनको टाल कर उसके निग्लेक्ट करके एकांत नियतवाद का आश्रय लेकर स्वच्छंदता का पोषण करता है, जबकि क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत तो पुरुषार्थादि अन्य तथ्यों को साथ लेकर चलता है, यानी सभी समवायों को इकट्ठा सोच कर कंसीडर करके फिर क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत होता है। यानी पहले दिन मैंने कहा था कि अन्यमती कहते हैं कि भगवान ने जैसा सोचा है या भगवान जैसा करता है या ईश्वर ने जो देखा है वो होगा, और जैनी क्या कहते हैं जैसे क्रमबद्ध में है वैसा होगा, तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। यानी जो सभी समुदायों को नहीं मानता और अकेला पर्याय की ओर देख देख कर कहता है या कुछ घटना घटी तो कहते नहीं जो होने वाला है जो क्रमबद्ध में है वो होगा, तो वो भी अन्य मति जैसा ही मिथ्यात्वी है। क्यों, क्योंकि क्रमबद्ध का निर्णय कैसा होगा कि वो सारी ही पर्याय एक साथ जो कंसीडर करेगा, पूरे द्रव्य स्वभाव को सम्मुख लेकर क्रमबद्ध पर्याय की बात करता है, यानी क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने वाले की दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर आती है। जैसे हमने पहले देखा था कि क्रमबद्ध पर्याय किसने जानी, हमें कहाँ से पता चला क्रमबद्ध पर्याय का, आगम से, आगम किसने बताया, सेवली ने, शेवली ने क्यों बताया? केवल ज्ञान में जाना, केवल ज्ञान में क्या जाना कि वस्तु में यह सारा क्रमबद्ध हो रहा है, ऐसा जाना। केवली ने भी उनको बनाया नहीं, बताया है, जानकर बताया। कहाँ जानकर बताया? सारे ही द्रव्यों की अनादि अनंत पर्याय उनके ज्ञान में आ रही है और उन्होंने ऐसे ही जाना है कि उसमें कोई फेरफार कर ही नहीं सकता। तो ये सारा इन्हें सर्वज्ञता स्वरूप जब हमें भाषित होता है तब ये क्रमबद्ध पर्याय की भी सिद्धि हो जाती है। तो सर्वज्ञता स्वरूप उनका जो केवल ज्ञान है सर्वज्ञता, वो कल हमने देखा था वो कहाँ से आता है? ज्ञेयों में से आता होगा ना। लोकाकाश है, अलोकाकाश है, सारी वस्तुएं है, इसलिए वे जान रहे हैं कि उनका ज्ञान का सामर्थ्य है, उसमें से वो ज्ञान के पर्याय आ रहे हैं। तो सर्वज्ञता जब हम निर्णय करते हैं तब हमें क्या पता चलता है कि वो सर्वज्ञत्व जो है सभी द्रव्यों की सभी पर्याय जानने रूप जो कार्य है वो स्वभाव में सी वो योग्यता है, वो स्वभाव में योग्यता थी, वो केवल ज्ञान में प्रकट हो गया। तो स्वभाव तो सभी जीवों का समान है, सर्वज्ञ के पास भी वो स्वभाव है। अब मेरे पास है कि नहीं है? क्योंकि वर्तमान में कुछ न कुछ जानने रूप कार्य मेरा भी हो रहा है, तो वो कार्य कहाँ से हो रहा है? वो भी पूरे मेरे स्वभाव से होता है। और स्वभाव जो है वो हमेशा परिपूर्ण होता है, वो स्वतः सिद्ध होता है, वो अनादि अनंत होता है, दूसरे के सहाय से नहीं है, स्वसहाय है, वो अखंड पूरा है, निर्विकल, उसमें कुछ भेद वगैरह नहीं है। तो ये जो स्वभाव है उस स्वभाव को पकड़ लेता है। निर्णय किसका कर रहा था? क्रमबद्ध का। या निर्णय किसका कर रहा था? सर्वज्ञ का। सर्वज्ञ का निर्णय करते 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 उसमें अभी ज्ञान मग्न था और पता नहीं चला कब स्वभाव को पकड़ लिया और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो मुझे अभी ये विकल्प छोड़ना है, मुझे अभी ऐसा स्थिर होना है, ऐसे कोई वहां रहते नहीं, ये सारा सहज हो जाता। एक किसी बात के ऊपर से पूरा हम वस्तु व्यवस्था का निर्णय करने जाए तो उस निर्णय में ही, उस निर्णय करते करते ही सम्यक दर्शन हो जाता। जब सम्यक तो होता है तब वो विकल्पात्मक नहीं रहता, विकल्प उससे छूट जाते, छोड़ने नहीं पड़ते। तो ये वस्तु स्वरूप का सही निर्णय करना यही पुरुषार्थ है और वो ही करते करते सम्यक दर्शन हो जाता है, उसके लिए और कुछ नहीं करना। देखो अंतिम लाइन, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत तो पुरुषार्थ आदि अन्य तथ्यों को साथ लेकर चलता है। इस संदर्भ में जैनेन्द्र सिद्धांत कोषकार की टिप्पणी द्रष्टव्य है। वो जैनेन्द्र सिद्धांत कोष नाम के मेरे ख्याल से चार खंड है, तो उसके जो ग्रंथकार है उन्होंने क्या लिखा है उसको देखते हैं। जो कार्य या पर्याय जिस निमित्त के द्वारा वह निर्मित हो गया, निमित्त करना उसको, जिस निमित्त के द्वारा, पहले निमित्त को लिया हा? क्योंकि कार्य में हमेशा दो कारण रहते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। तो जो कार्य या पर्याय जिस निमित्त के द्वारा जिस द्रव्य में, जिस क्षेत्र व काल में जिस प्रकार से होना होता है वह कार्य उसी निमित्त के द्वारा, देखो निमित्त भी निश्चित है, कौन सी द्रव्य की उपस्थिति में वह कार्य होगा यह भी सारा निश्चित है। जब यहाँ कार्य हो रहा है तब सामने कौन से द्रव्य होंगे, क्योंकि उसका भी वो क्षेत्र निश्चित है ना, उस द्रव्य का वहाँ मौजूद होना वो भी निश्चित है, वो उसके अपने क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार निश्चित है। सारे ही द्रव्य अपने अपने क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार विशिष्ट पर्याय कर रहे हैं। अब हमारी जो विशिष्ट पर्याय हो रही थी तो सामने जो अनुकूल लगे, अनुकूलता का उपचार आए, ऐसा कोई अन्य द्रव्य भी अपने आप में परिणमन हो रहा था उसका, तो हम कहते हैं कि इसने अपना हमारा कार्य किया। शिष्य की ज्ञान पर्याय अपने से जब वहाँ उसका उघाड़ उठना होना था वह हो रही थी, तब सामने गुरु भी अपने में उसकी, उनकी वो राग वाली पर्याय, ज्ञान वाली पर्याय सारा वहाँ था, उनका वो वचन योग था, उनका वो वाणी का फिरना, वो ये सारा उनके अपने में हो रहा था। और दो द्रव्यों के ऐसी सेम पर्याय हमने देखी तो उसमें वो निमित्त रूप अनुभव पाया, या कोई पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसने निर्णय कर लिया आचार्य उनके शास्त्र है और वो पढ़ते पढ़ते उसने निर्णय किया अपनी बुद्धि से। हो सकता है पूर्व की कोई देखना मिली हो उसको, तो वहाँ क्या होता है कि हम उसको उस पुस्तक को उसका निमित्त कहते हैं। तो निमित्त भी निश्चित है। तो जो कार्य या पर्याय जिस निमित्त के द्वारा, ये निमित्त या जिस द्रव्य में, जिस क्षेत्र या काल में, जिस प्रकार यानी जिस विधि, उससे सारे ही पूर्व को पर्याय भी सारे निश्चित है। जिस प्रकार से होना होता है वह कार्य उसी निमित्त के द्वारा उसी द्रव्य क्षेत्र व काल में उसी प्रकार से होता है, ऐसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्ट से समुचित नियत कार्य व्यवस्था को नियति कहते हैं। यानी अकेला भवितव्य को नियति नहीं कहते। तो नियति में कौन कौन होगा? जिस द्रव्य की पर्याय होनी है वह पर्याय। अभी ये जो द्रव्य क्षेत्र काल, एक द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं लिए, जिसकी पर्याय वह द्रव्य हुआ। क्षेत्र ने अभी हम यहाँ बम्बई में है, यहाँ बैठे हैं, ये पर क्षेत्र की अपेक्षा भी लिया, ये क्षेत्र हुआ। अभी कौन से काल में हो रहा है, ये काल है। और भाव में भी जिस प्रकार से होना है उसको भाव में लिया, इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटाया। अब अपने एक ही द्रव्य का भी द्रव्य क्षेत्र काल उसमें घटाते, वो तो है ना। प्रत्येक द्रव्य का द्रव्य कहाँ किस जिस प्रकार में भाव आया ऊपर है ना। देखो पहले तो निमित्त के द्वारा, निमित्त कौन सा द्रव्य है? पर द्रव्य। जिस द्रव्य में, ये स्वद्रव्य में जहाँ पर्याय होनी है, जिस क्षेत्र में, यहाँ भी पर क्षेत्र की अपेक्षा बात की है, क्योंकि जिस क्षेत्र में अगर स्व क्षेत्र की अपेक्षा देखो तो जिस क्षेत्र में यानी उसी द्रव्य में होने वाली है पर्याय, जिस काल में यानी उस पर्याय का काल भी निश्चित है, यानी इसको स्व द्रव्य क्षेत्र काल में भी और पर द्रव्य क्षेत्र काल में भी घटा सकते हैं। यानी पर द्रव्यों की वहाँ स्थिति भी वो निश्चित है, अकेला ही स्वद्रव्य की निश्चित है ऐसी नहीं है। स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव तो वहाँ है ही नहीं निश्चित, वो तो सारे ही निश्चित है। परंतु अभी निमित्त तो पर द्रव्य में गया और अन्य अन्य उस समय अन्य अन्य कौन से द्रव्य की कौन सी स्थिति होगी ये भी सारा निश्चित है। अभी हम क्लास में बैठे हैं तो हमारे साथ अन्य कौन कौन से जीवों की यही स्थिति होने वाली ये भी सारा निश्चित है। यानी ये सारे ही लेना उसमें कि द्रव्य क्षेत्र काल व भाव रूप चतुष्टय से समुचित नियत कार्य व्यवस्था को नियति कहते हैं। उसमें स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव सबको लेना। हाँ, जिस प्रकार से होना होता है विधि हुई, विधि उसी में भाव लेना कि जिस द्रव्य में होना है वो तो द्रव्य हुआ, क्षेत्र हुआ, काल यानी वो व्यवहार काल की बात है या जिस काल में, और जिस प्रकार है उसमें भाव होना ही है वो नियति में लिया। ये सारों को ही इकट्ठा कंसीडर करना उसको नियति कहते हैं। नियति ये शब्द में जिसकी पर्याय वो द्रव्य आया, जहाँ होनी है वो क्षेत्र आया, जब होनी है वो काल आया, जिस प्रकार से होनी है वो भाव आया, और निमित्त तो पहले ही हमने ये देखा था। तो ये सारे पांचों को ही हम इकट्ठा लेंगे तब उसको कहते हैं नियति। यानी अकेले भवितव्य या होनहार को हमने नियति नहीं कहा, जैसे अन्य लोग कहते ना जो होनी होगी होगी होगी, वो मरना था तो मरा, ये एक्सीडेंट से नहीं मरता तो रोग से मर जाता, तो उसने नियति को माना कि नहीं माना, क्योंकि निमित्त तो उसने ताप बदल दिया। उसका क्षेत्र भी रोड पर मरने वाला था, उसको हॉस्पिटल में मरवाया, तो क्षेत्र बदल दिया उसका। अकेले काल को या अकेले नियति को मानते हैं तब वो उसका वाद है, जिसको कहते हैं एकांतवाद हो जाता है। स्व भी लेना उसमें, द्रव्य में तो स्व ही आया ना, अकेला पर नहीं लेना। स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो पहले ही हमने उपस्थित कर दिया, क्योंकि ये द्रव्य में होता है ना, अपने द्रव्य में होता है, कोई भी पर्याय अपने द्रव्य में होती है। द्रव्य में तो उसका सगा सभी उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव आया अपने द्रव्य में, अब ये जो अन्य जो क्षेत्र और काल बताया है उसमें स्थान भी निश्चित है और उसका समय भी निश्चित है, कब होगा ये उत्सर्पिणी काल के अवसर्पिणी काल के पंचम काल में भरत क्षेत्र में बम्बई नगर में यहाँ पर हम कहाँ बैठे हैं, यहाँ हमको ऐसे समय तो होगा या इतना हमको ऐसा अनुभव होगा, ये सारा निश्चित है कि नहीं? वहाँ ये परद्रव्य क्षेत्र काल भाव कर लेगा। और अपने काल की बात आती है तब अपना भी काल निश्चित है, किस समय कौन सी पर्याय की योग्यता है, वो अनादि अनंत प्रवाह में उसका उस पर्याय का जो समय निश्चित है वो अपना स्वकाल हुआ। देखो नियत कर्मोदय रूप निमित्त की अपेक्षा इसे ही दैव, देखो क्या कहते हैं, नियत कर्मोदय रूप निमित्त की अपेक्षा, यानी निमित्त भी नियत है तो कर्मोदय लिया, अभी कौन सी भी घटना घटनी है तो उसमें कर्म का उदय उसमें निमित्त रूप लिया, अभी सम्यक दर्शन होना है तो कर्म का उदय नहीं कर्म का वहाँ उपशम होगा, कर्म निमित्त में कर्म को लिया, कुछ हमें विशिष्ट प्राप्ति होने लाभ होने वाला है तो वहाँ लाभांतराय कर्म है उसका क्षोक्षम है, या हमारा जो साता वेदनी है उसका उदय है तो इसलिए वहाँ कर्मोदय को निमित्त में लिया और वो कर्मोदय भी निश्चित है इसलिए नियत कहा, उसी को तो दैव कहते हैं। तब हमें एक्सपेक्ट नहीं है, वो आपको नहीं दिखते है मगर कर्म है कि नहीं है, देखो ये समझाने के लिए है ना, कर्मोदय अभी जीव की अपेक्षा से वहाँ कर्मोदय कहेंगे, अभी वहाँ कुमार की अपेक्षा उसको राग आया गड़ा बनने का बनाने का राग आया, वो राग में कौन निमित्त है, साहित्य मोहनी है ना उसका तो उस राग में निमित्त, ये यहाँ क्या लेना, देखो नियत कर्मोदय रूप निमित्त की अपेक्षा इसे ही दैव, अभी घड़े को तो आप दैव नहीं कहते, दैव किसके लिए यूज करते, दैव शब्द को समझाना है कि हमारे दैव में क्या होगा, हमारे भाग्य में क्या है, ऐसा हम कहते ना, हाँ भाग्य, हमारे भाग्य के अनुसार हमें चीजें उपलब्ध होती है ऐसा कहते हम, हाँ तो इसीलिए वो जीव की अपेक्षा है, संसारी जो जीव है उसकी अपेक्षा कि दैव किसको कहते हैं, हम कहते ना ये हमारे दैव में था नहीं, वो ऐसी कहावत है देव ने दिया और दैव ने ले लिया, आपने नहीं सुना, देव देता है और दैव ले जाता है ऐसा कहते हैं, मैंने अपने भाग्य में था ही नहीं, किसी ने भले ऊपर आके जल के आपको पैसे दिए और जाते जाते सोने लूट ले, अरे हमारे नसीब नहीं थे नहीं, नसीब कहते कोई दैव कहते कोई भाग्य कहते, तो ये नसीब किसको कहना कि नियत कर्मोदय, वो कर्मोदय भी निश्चित है और उसको निमित्त में लिया, तो नियत कर्मोदय रूप निमित्त की अपेक्षा इसे ही दैव कहते हैं, क्योंकि हमने कहते थे हम तो इतना बराबर पता है हमारे नसीब में ही नहीं था, यानी हमारा कर्म का उदय भी वैसा नहीं था, वो तो निश्चित था कि नहीं, इसीलिए तो हमने उसको दैव कह दिया, नसीब कह दिया, अपना भाग्य कह दिया, ये तो सुना है ना आपने कि भाग्य से कम और समय से पहले, ज्यादा कहो कम कहो, भाग्य से ज्यादा कहो, भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता और भाग्य से कम भी नहीं मिलता, जितना है उतना मिलेगा कि नहीं, कम तो क्योंकि हम कम चाहते, देखो हमारी चाह तो अधिक की होती है ऐसी बात नहीं है, हम क्या चाहते हैं, चाह कितनी है, ज्यादा की है, कोई ऐसा नहीं चाहता कि हमको कम मिले, हर एक क्या चाहता है हमें ज्यादा मिले, इसलिए उसको कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा, अगर मैं चाहूँ भाग्य से कम ही मिले तो अच्छा है, ये झंझट कौन मोल ले, मैं तो वो भाग्य जितना उतना तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा भी है ना उसमें हाँ चक्रवर्ती को तो इच्छा थी ना वो समोसरण में बैठने की, कहाँ जाना पड़ा, अरे वो भाग्य से कम भी नहीं ले सका, अकेला एक राज करता और ये आराम से शुद्धोपयोग करता बैठता ना, वो 7,000 साल तक क्यों गया वो चक्र लेकर छखंड? हाँ, उसका पुण्य इतना था, उसको भोगना पड़ता है, भाग्य है ना उतना, क्या करे, वो बिना भोगे भी छुटकारा नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि पाप को ही हम भोगते हैं, अरे पुण्य को भी भोगना पड़ता है। वो पहले हम पूजा में पहले आता था अशुभ के निवारण के लिए कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कहता शुभ के निवारण के लिए मैं करूँ, वहाँ तो ऐसे कहते कि अशुभ हमारा दूर हो और शुभ हमारा पुण्य बढ़ता रहे, पुण्य बढ़ता रहे। अरे पुण्य बढ़ता रहे ये इच्छा क्या है? इच्छा तो है क्या, क्या शुभ भाव है? मेरे पुण्य बढ़े, मेरे पाप नष्ट हो जाए, ऐसी भावना भाई उनके इतना अच्छा जीवन। क्या कहता है? हमारे पाप दूर हो जाए और हमारा पुण्य दिन भर दिन बढ़े, दिखने के लिए तो कितना अच्छा लगता है। उसका अर्थ क्या निकलता है कि हमारा बंद होता रहे, यानी मान्यता में मिथ्यात्व पड़ा है। और मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, ये तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। यानी कोई तीव्र पाप छोड़ता है, कोई पाप नहीं करता है, पूजा में बैठा है और कहता है मेरे अशुभ टल जाए और मेरा पुण्य बढ़ता रहे, तो सारे लोग उसको धर्मात्मा और पुण्यात्मा कहते हैं। व्यसन है उससे भी महान पाप है ये। कौन सा? ये मिथ्यात्व, जिस मान्यता में है कि मेरा पुण्य बढ़ता ही रहे और मेरे पाप क्षय होते जाए, और फिर क्या कहता है, मेरे अष्ट कर्म नष्ट हो जाए। पुण्य कर्म सारे रखना चाहता है, पुण्य देखो हम क्या कह रहे हैं उसका अर्थ नहीं ख्याल में आ रहा है। हमारा पुण्य बढ़ता रहे यानी पुण्य बंद होता रहे, और फिर अष्ट कर्म कैसे नष्ट हो गए? जो कहेगा अरे मेरे पुण्य और पाप कर्म सारे ले जाओ तो अच्छा है, अरे कोई नहीं ले जाता। अभी जो कहता है, देखिए फिर से मैं पूछती हूँ, जो कहता है कि मेरा पुण्य बढ़ता रहे मेरे पाप नष्ट हो जाओ, वो पुण्य करता है कि पाप ज्यादा करता है? क्यों? क्योंकि मिथ्या है। अभी जो ऐसा कहता है कि मेरे पुण्य पाप दोनों ही नष्ट हो जाए तो अच्छा है, पाप तो छोड़ने योग्य है ही, पुण्य भी सारा छोड़ने योग्य है, और ऐसा मानता भी है, उसको सम्यक तो भी है, तो वो क्या कर रहा है? पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है? पुण्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो ऐसा कहता है कि ये पुण्य भी है, यह है छोड़ने लायक है, यानी उसकी सही मान्यता है, सही मान्यता सही तो ऐसा कहता है, ऐसा निर्णय करता है, तो वो निर्णय पाप है क्या पुण्य है? पुण्य है। और जो यहाँ कह रहा है कि मेरे सब पाप नष्ट हो जाए पुण्य सब बढ़ते रहे, वो क्या कर रहे हैं? पाप बहुत बड़ा कर रहा है, वो मिथ्यात्व वाला पाप जिस दुनिया को दिखता ही नहीं है, बंद तो छूटेगा नहीं ना शुरू में, वो मान्यता में क्या है उसके पुण्य छोड़ने लायक है। अभी वो मिथ्यात्व वाला पाप जो था वो हट गया, अभी जो वो उससे छूट नहीं रहा है, पुण्य से पूरा छूट नहीं रहा है, तो उतना तो उसको बंद हुई हो रहा है, बंद से वो छूटा नहीं अभी तक, अभी बंद में है, परंतु मान्यता में जो उसको करने लायक मानता था, पुण्य की जो रुचि थी उसको, वो छूट गई है, पुण्य तो बढ़ता जाएगा उसका। जो कहता है ना कि मेरा पुण्य बढ़े तो अच्छा, वो तो पाप कर रहा है, और जो कहते हैं कि मेरा पुण्य भी छूट जाए तो अच्छा, उसका तो पुण्य बढ़ रहा है। नहीं ख्याल में आए? यानी ऐसा ये सारा सस्ते नहीं है, ये सारा सस्ते नहीं हो रहा है, वो तो 70 कोड़ी का पाप बांध रहा है और ये तो पुण्य बांध रहा है, अधिक से अधिक पुण्य। शुरू में ऐसा ही होता है, समय दशा होने के बाद चौथे पांचवे छठे सातवें गुण स्थान तक तो पुण्य इतना बढ़ता है, वो नहीं चाहता है, फिर भी क्या करे, बढ़ता है क्या करे, और पूर्व में जो जो पाप बांधे ना वो भी अनंत गुना उसकी हीनता होती जाती है और पुण्य भी अनंत गुना बढ़ता जाता है। ये तो शुरू में तो ऐसा ही होता है और वो चाहता कुछ नहीं है, वो तो चाहता तो है कि अरे बापरे ये पुण्य के पर्वत यहाँ बढ़ रहे हैं, वो कब छूटेंगे मेरे, चाह तो बिल्कुल नहीं उसको पुण्य की, परंतु ऐसा अपूर्व पुण्य बन रहा है उसको। शुरू में तो ऐसा ही होता है, वो निर्जरा भी होती है ना, तो पाप कर्मों की यदि अशुभ प्रकृति सारी निर्जरित होती जाती है, पुण्य प्रकृति तो पड़ी रहती है ऐसी की वजह, नहीं तो ये चक्रवर्ती पद क्यों भोगना पड़े। ये इंद्रादि ऊपर ऊपर के जो सर्वार सिद्धि तक जाते हैं वो जल्दी पहले स्वर्ग में जाके फिर आते और जल्दी मोक्ष चले जाते, तो वो 33 सागर क्यों पड़े रहे वहां। अरे पुण्य कहाँ, वो पुण्य भोगना तो पड़ेगा ना, और वो भोग भोग तो भी निर्जरा नहीं होने वाली, बिल्कुल ऊपर की श्रेणी के भी ऊपर ऊपर के गुण स्थान में जाएगा तब पुण्य की निर्जरा भी होनी शुरू होगी, तब तक उसकी भी निर्जरा नहीं होगी। ये तो ऐसा ही क्रम है, पहले तो सारे अशुभ कर्म ही छूटते चले जाएंगे। वो निर्जरा की भी बहुत बड़ा उसका साइंस है, उसका गणित है। शुरू में तो पुण्य बढ़ता ही है, परंतु वो पुण्य की इच्छा तो कब की छूट जाती है, उसके बिना तो सम्यक तो ही नहीं होता, और सम्यक तो होने के बाद तो वो सहज वो दिन भर भी उसके जो विचार चलते है शास्त्रों के विचार चलते रहते हैं, तो इसी की भावना रहती है। शुद्धोपयोग तो कभी कभी होता है, परंतु भावना तो उसी की रहती है और विचारों में तो ये शास्त्र के सिद्धांत ही चलते रहते, तो उसका पुण्य तो बहुत बढ़ता है और इच्छा तो बिल्कुल नहीं पुण्य की, कभी से छूटो ऐसा लगता है, सहज बनता जाता है। उसके लिए उसके कोई इच्छा भी नहीं है और कुछ उसके पुण्य के फल भी भोगने की इच्छा नहीं होती, और फिर भी सारा सहज उसको प्राप्त होता रहता है। अज्ञानी की दृष्टि तो उसी पर है, पुण्य पाप पर, और पुण्य क्यों चाहता है, क्योंकि पुण्य का फल चाहता है, इसलिए पुण्य चाहता है। मेरा पुण्य बढ़े ऐसा कौन कहेगा, कि जिसको विषयों में रुचि है वो वही कहेगा, जिसको पुण्य पाप छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है वो पुण्य को भला कहेगा ही नहीं। अरे वो तो कर्म प्रकृति है ना पुण्य पाप, और हमको सारे कर्म छोड़ देने हैं या कुछ रखने भी है। हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या विचार हमारे, ये सारा अभिप्रायों में पड़ा हुआ है मिथ्या को, और बाहर तो हम देखते हैं कि बाहर की क्रिया में ही हमने धर्म मान रखा, यात्रा करते हैं, पूजा करते हैं, ये सारा दिखते हैं बहुत धर्मात्मा है, लेकिन वो अभिप्रायों में क्या पड़ा है उसकी तो खबर ही नहीं अपने को, और अपने अभिप्राय अपने को ही देखना पड़ेगा कहाँ हम चूक रहे। कोई बहुत दयालु होकर कहेगा अरे तेरी ये अभिप्राय में भूल है, और सामने वाला भी सज्जन होगा तो स्वीकार करेगा, उसको भी ऐसा लगेगा अरे मेरे इतनी बड़ी भूल, इतना अज्ञान इसने जीव ने दूर किया, और कोई ऐसा होगा तो उल्टा हो जाएगा, बहुत अपने को स्याना समझता है, समय दृष्टि मानकर बैठा है और इस सब दुनिया को मिथ्या मिथ्या कह रहा है, ऐसा कहेगा वो। तो होता ना अपने अभिप्राय के अनुसार कोई एडवाइस दे, कोई उपदेश दे, हाँ ये अच्छा, और अपने अभिप्राय के विरुद्ध कोई अपना अभिप्राय गलत है ऐसा दिखा दे, तो ऐसा वो तिल मिला जाता है, बंद करो ये सारा हमारे सामने वो आप बोलने की जरूरत नहीं, ऐसे तरह हो जाता है। देखो ये नियत कर्मोदय रूप निमित्त की अपेक्षा इसे ही दैव, हिंदुवेन ख्याल में है ना, दैव किसे कहना, जिसको ये सारे लोग नसीब नसीब कहते हैं, हाँ हाँ समुदित ने सारों को इकट्ठा कलेक्टिवली, देखो उसमें फिर देखेंगे, ऐसी द्रव्य क्षेत्र काल व भाव रूप चतुष्टय से समुदित नियत कार्य व्यवस्था को, ये सारे ही उसमें निमित्त भी लिया, निमित्त के साथ द्रव्य क्षेत्र काल भाव सारे के लिए, यानी उसमें स्व और पर द्रव्य लेना है तो स्व द्रव्य में अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और बाकी एक तो परम है तो निमित्त जो है ही, और पर क्षेत्र की भी अपेक्षा वहां ले सकते हो, किस क्षेत्र में किया, कहाँ वो पर्याय होगी, किस काल में होगी, अब ये भूकंप आने वाला था वो आया तो वो कब आया, कहाँ आया, उसमें निमित्त कौन था, ये सारे सारे बातें उसमें ना, ये एक घटना घटी तो उसमें तो सारा ही निश्चित था। हाँ देखो, समुचित यानी सबको इकट्ठा कलेक्टिवली, नियत जो कार्य व्यवस्था है, कार्य यानी पर्याय, पर्याय की जो निश्चित व्यवस्था है, पर्याय होने में द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त पांचों ही आ गए और सबको मिलकर यहाँ नियति कहा। अब जो जो हम लौकिक में शब्द ये कहते हैं ना, दैव हमारा ऐसा ही है, वो दैव में कौन कौन सी बातें हैं, तो नियत कर्मोदय, निश्चित कर्मोदय, निश्चित कौन सा निश्चित नियत है, निश्चित जो होने वाला है वही निश्चित, हम कहते हैं ये तो निश्चित है, सुनिश्चित है, वो नियत कर्मोदय रूप निमित्त, ये निमित्त की अपेक्षा, यानी कर्म का उदय भी निश्चित है तो उसकी अपेक्षा, इसे ही दैव कहते हैं। हमारा नसीब ही ऐसा है, जब कहते हैं तो नसीब ही यानी कुछ तो नक्की है ऐसा ख्याल में आता है ना, वो निश्चित है कि हमारे नसीब में ऐसा ही होना था, तो ये नसीब में होना था यानी क्या, वो वहां का जो कर्म का उदय था वो निश्चित है, उसको हमने दैव कहा। हाँ ये कौन, ये दैव कालब्धि भवितव्य, ऐसे जो जो हम अलग अलग शब्द लेते हैं उसका अर्थ क्या है, तो उसको दैव कह दिया। नियत काल की अपेक्षा इसे ही कालब्धि, अब देखो हम तो पांच समवाय लिए हैं तो उसमें एक निमित्त है, तो निश्चित निमित्त है उसको हमने दैव कहा, लौकिक भाषा में अभी इसको कहेंगे, पांच समवाय को इसी में डाल देंगे। दैव किसे कहा, कि वो निश्चित निमित्त एक काल कर्म का उसमें लिया, नियत काल, अभी काल भी निश्चित है कौन सी पर्याय कब होगी, वो निश्चित काल है तो उसके उसी के अपेक्षा इसको काल लब्धि कहा। हमने कहा ना कि काल लब्धि पक गई, इसमें भी आता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, काल लब्धि पाकर कोई जीव सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है, यानी उसका सम्यक्त्व उस पर्याय की उसी समय होने की योग्यता है, परंतु हमने अकेले काल को जब ख्याल में लेते हैं तो उसी को हम काल लब्धि कहते हैं। और होने योग्य नियत भाव, नियत यानी निश्चित भाव, निश्चित भाव यानी वो उसकी निश्चित पर्याय, होने योग्य कहा ना, तो यहाँ भाव में गुण को नहीं लेना, क्योंकि होने योग्य क्या होता है, पर्याय होती है, क्योंकि गुण तो है और है, द्रव्य और गुण में तो होने योग्य कुछ है ही नहीं है, वो तो सारे तो है ही, होने योग्य किसको कहते हैं, पर्याय को, क्योंकि वो होती है ना, जो नहीं थी वो हुई, तो उसको हमने क्या किया, होने योग्य हुई, तो जो होने योग्य नियत भाव है या कार्य है, कार्य कहो, अभी कार्य का ना, कार्य यानी पर्याय, उसी को नियत भाव का, उसकी अपेक्षा इसे ही भवितव्य कहते हैं, यानी जिस काल में हुए उसी को काल, और जो होने योग्य पर्याय हुई उसी को भवितव्य, ये सारा। हाँ भवितव्य, व्य लगाते ना, कर्तव्य करने योग्य, भवित यानी होने योग्य, उसी को कहते भवितव्य, ये सारे संस्कृत शब्द से निकले हैं ना, तो उसका संस्कृत का मीनिंग ख्याल में लेते हैं तो शब्द का भी मीनिंग ख्याल में आ जाता है। नियति ऊपर लिखा ना, ये सारे ही को इकट्ठा लेना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और निमित्त, ये सारों को ही नियति में लिया, यानी सारे ही नियति में आ गए। हमने कहा ना ये नियति ऐसी ही थी, यानी ये क्रमबद्ध ऐसा ही था, तो क्रमबद्ध में कौन सी बातें आई, पांचों ही आई, पांचों ही समवाय, उसी को यहाँ नियति कहा। नियति यानी यानी हम कहते हैं होनहार ऐसी है, होने योग्य, यानी लौकिक में नियति हम अलग बताते, अकेला नियतवाद को लेते हैं ना, जहाँ नियतवाद वहाँ जो जो भवितव्य है उसी को नियति कहते, कोई होनी जिसको कहना है, मगर उसमें अकेला एक को नहीं लेना, सबको मिलकर वो नियति, सच्ची नियति किसको कहते हैं, तो सारे ही कारण इकट्ठे हो जाते हैं और ये कार्य बनता है वो सारे को ही लेकर नियति कहते हैं। यानी उस नियति में दैव भी लेना, काललब्धि भी लेना, भवितव्य भी लेना, सब लेना। ये तो नियत वो अलग, वो नियत सारी नहीं, इसलिए उसके नीति 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 उसकी नियत नियत यानी नीति वो नहीं। यहाँ जो नियत कहते हैं वो नियत यानी निश्चित नियत भाव, निश्चित भाव वही होगा अन्य नहीं होगा, उसको कहते नियत डेफिनेट वही होगा। ये ख्याल में है ये पैराग्राफ पूरा? हाँ, यहाँ दैव काल लब्धि और भवितव्य ये तीन बातें बताई, वो आएगा आगे। पहले तो इन्होंने इसकी परिभाषा बताई, दैव किसे कहना, काल लब्धि कहना किसको और भवितव्य किसको कहना, यही इसी को वो पांच समयों में फिट करके दिखाएंगे। अपने अपने समयों में क्रमपूर्वक नंबर वार पर्यायों के प्रकट होने की अपेक्षा श्री कांजी स्वामी जी ने इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय शब्द का प्रयोग किया है। यानी अलग अलग शास्त्रों में उसी को अलग अलग शब्द आया। यहाँ तो नियति कहा ना, सबको मिलकर क्रमबद्ध पर्याय को ही नियति कहा, और नियति में क्या क्या आया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और निमित्त सारे ही आ गए। अब यहाँ जो दैव काल लब्धि और भवितव्य बताया है उसकी चर्चा आगे करेंगे। यद्यपि करने धरने के विकल्पों पूर्ण रागी बुद्धि में सब कुछ अनियत प्रतीत होता है, यानी करने धरने के विकल्प जहाँ बहुत सताते हैं वहाँ क्या समझना, ये राग के कारण हो रहे हैं। और ये राग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सारा अनियत प्रतीत हो रहा है, कुछ निश्चित नहीं है और मैं करूँ तो होगा, ऐसा नहीं मानता कि ये सारे ही उसमें निश्चित है, निमित्त भी निश्चित है। सामने वाले जीव को मैं ऐसा पलटा दूंगा कि वो सही रास्ते पर आ जाएगा, परंतु ऐसा यानी मैं उसका निमित्त बनूं, वो बताते भी ऐसे, अरे निमित्त तो होऊं ना मैं इसका निमित्त तो बनूं कि नहीं बनूं, यानी वो निमित्त से कार्य को मानता तो है ही, परंतु मैं उसका निमित्त बनूं इसमें वो दूसरे का निमित्त पर्याय का निमित्त निश्चित है इसको नहीं मानता, स्वयं उसका निमित्त बनना चाहता है। यानी उसको ऐसा नहीं वो डेफिनेट नहीं है ऐसा उसे लगता है, इनडेफिनेट है ऐसा लगता है। देखो क्या ये इसको फिर पढ़ेंगे। यद्यपि करने धरने के विकल्पों पूर्ण रागी बुद्धि में, यानी जिसको करने धरने की बुद्धि है, ऐसा जो रागी बुद्धि है, रागी जीव है, उसकी बुद्धि में क्या है, सब कुछ अनियत प्रतीत होता है, अनिश्चित है ऐसा उसे लगता है, कि डेफिनेट नहीं है कुछ ऐसा उसको लगता है, कुछ क्रमबद्ध है ही नहीं ऐसा उसे लगता है। नहीं नहीं वो तो करने की बुद्धि है ना उसको, यहाँ कुछ नहीं है इसलिए मैं पलटा सकता हूँ, यदि वो डेफिनेट मानता तो पलटने की बुद्धि आती नहीं उसको, क्रमबद्ध ही मानता नहीं है, यानी सारा कुछ क्रमबद्ध नाम की कुछ चीज ही नहीं ऐसा मानता है, यानी कुछ भी क्रमबद्ध नहीं है ऐसा मानता है, अनियत है यानी क्रमबद्ध नहीं है ऐसा मानता है, यानी पर्याय फेरफार की जा सकती है ऐसा उसकी मान्यता में है पड़ा हुआ, उसको सारा ही अनियत प्रतीत होता है। परंतु निर्विकल्प समाधि के साक्षी मात्र भाव में विश्व की समस्त कार्य व्यवस्था उपरोक्त प्रकार नियत प्रतीत होती है। देखो निर्विकल्प समाधि का साक्षी मात्र भाव, इसका अर्थ क्या होता है, वो साक्षी भाव रह जाता है, ज्ञाता दृष्टा रूप रह जाता है, साक्षी मात्र भाव यानी ज्ञाता दृष्टा रूप रहना या समता भाव रहना। तो ये कब हो सकता है कि निर्विकल्प समाधि में, निर्विकल्प समाधि यानी अपना जो त्रिकाली स्वभाव है निर्विकल्प, उसकी अभेद अनुभूति, निर्विकल्प समाधि यानी अपनी अभेद अनुभूति जो है उसमें साक्षी मात्र भाव, अपने को तो ज्ञायक रूप से उसने हम स्थापित कर लिया, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा उसके अनुभव में आ रहा है। तो ज्ञायक क्या कर रहा है? जान देख रहा है, जो ज्ञायक है वो जान रहा है ना। तो मैं साक्षी हूँ ऐसा उसको रटना नहीं पड़ रहा, अभी उसने अपने ज्ञायक में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अनुभव कर लिया। तो ज्ञायक क्या कर रहा था? जान रहा था। तो उस भाव में उसको क्या ख्याल में आता है कि विश्व की समस्त कार्य व्यवस्था उपरोक्त प्रकार नियत प्रतीत होती है। तब वो सच्चे मायने में ज्ञाता दृष्टा हो गया, क्योंकि उसको ऐसा भासित होता है कि अरे सारी व्यवस्था निश्चित है, सारी कार्य व्यवस्था, सारी ही पर्याय निश्चित है। अपने भी समय दर्शन के पर्याय हुई कि नहीं हुई झांकने की जरूरत नहीं लगती उसको। जो पर्याय का लक्ष्य करेगा तो समय दर्शन नहीं होगा। स्वभाव में लीन है तो स्वभाव में लीन होते हुए समय दर्शन की पर्याय सहज प्रकट हो जाती है। अभी मुझे समय दर्शन हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, जैसे हम जमीन में बीज डालते हैं, बच्चे लोगों को बताएंगे अरे अभी इसमें से झाड़ आएगा, तो क्या करते हैं एक एक घंटे में खोल खोल कर देखेंगे मिट्टी दूर करके, अरे झाड़ आए कि नहीं इसमें से, इसमें से तो कब आएगा, वो तो बीज सूख जाएगा। वैसे स्वभाव सन्मुख होने का बस इतना ही कार्य करना है। ज्ञाता दृष्टा में ये सारा बाकी तो कार्य सहज है। तो निर्विकल्प समाधि के साक्षी मात्र भाव में विश्व की समस्त कार्य व्यवस्था, समस्त कार्य व्यवस्था ने विश्व में क्या है तो अनंत द्रव्य है, और उसकी कार्य व्यवस्थाएं ने परिणमन होने की व्यवस्था, उसकी पर्याय होने की व्यवस्था, कौन सी पर्याय होगी, कब होगी, कैसी होगी, किस निमित्त से होगी, ये सारी जो कार्य व्यवस्था है वो क्या है, उपरोक्त पर्याय प्रकार नियत प्रतीत होती है। पहले क्या लगता था, मिथ्यात्व अवस्था में अनियत, ऐसा ले लो मिथ्यात्वी जीव को सारा ही अनियत लगता है, इसीलिए दूसरे का करने धरने फेरफार करने की बुद्धि होती है, और सम्यक दृष्टि को सारा ही नियत प्रतिभासित होता है, तो करने धरने की बुद्धि नहीं वहाँ। अतः वस्तु स्वभाव निमित्त ने दैव पुरुषार्थ काल लब्धि व भवितव्य, पहले तो इसलिए ऊपर जो हम उन्होंने समझाए थे ना पहले कि दैव में किसको लेना, निमित्त ऊपर लिया था, नियत कर्मोदय रूप निमित्त। तो वस्तु स्वभाव ये तो पांच समवाय है, स्वभाव में यानी वस्तु स्वभाव, द्रव्य का स्वभाव। अभी समय दर्शन होना है तो पुद्गल में ऐसी पात्रता है कि उसे समय दर्शन होगा, तो वो वस्तु स्वभाव में ही नहीं है, उस द्रव्य में वैसा स्वभाव ही नहीं है, क्योंकि उसमें श्रद्धा गुण ही नहीं है, उसमें ज्ञान गुण ही नहीं है। तो क्या कहते हैं कि वस्तु स्वभाव निमित्त यानी दैव पुरुषार्थ काल लब्धि और भवितव्य, काल लब्धि यानी जिस काल में और भवितव्य में जो पर्याय होनी है वह, इन पांचों समवायों से समवेत यानी उसके साथ, तो उपरोक्त व्यवस्था सम्यक है और इनसे निरपेक्ष वही मिथ्या है। देखो जहाँ जहाँ ये मिथ्या है ने जिसकी मान्यता में ये पांचों ही समवायों से कार्य होता है ऐसा बराबर आ गया, उसकी मान्यता सही है, और जिसकी मान्यता में ये पांचों समवायों में कहीं ना कहीं उलट पुलट गड़बड़ चलती है, कहीं मैं फेर सकता हूँ, कुछ अनियमितता है तो कार्य अन्य हो जाए, ऐसे जो मानता है यानी इनसे निरपेक्ष इनकी अपेक्षा रहित वो मिथ्या है, सारे ही पांचों की अपेक्षा सहित वो सम्यक है और इनकी अपेक्षा से रहित वह मिथ्या है। निरपेक्ष का अर्थ ख्याल में है ना, अपेक्षा रहित। निरुद्यमी पुरुष यानी आलसी मनुष्य अपुरुषार्थी मिथ्या नियति के आश्रय से वो उसने नियति को मिथ्या माना। पहले हमने नियति में सारे ही फिट कर दिए थे, नियति कहाँ किसको था, निमित्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और निमित्त ऐसे पांच हम नहीं कर सकते, या निमित्त और ये चारों जो है वो उपादान में आते, चार समूह है ना वो उपादान में लेना और एक निमित्त, निमित्त उपादान में भी घटता है, या द्रव्य क्षेत्र काल भाव यानी स्वद्रव्य परद्रव्य निमित्त ऐसा भी घटता है, या पांच समवाय उसमें भी एक निमित्त है। पुरुषार्थ किसमें होगा? अपने द्रव्य में के पर में। स्वभाव किसका है? अपने द्रव्य का। फिर काल लब्धि, वो अपना ही स्वकाल है, और भवितव्य अपने पर्याय है। ये सारा स्व और ये पर में घटता है, पांच समवाय। यानी इसमें पांच समवाय में घटित करो, या निमित्त उपादान में घटित करो, या स्वद्रव्य परद्रव्य में घटित करो, ये सारा ही घटित होता है। सबको इकट्ठा कंसीडर करना वो है सम्यक नियति, और अकेला नियति को बाकी सबको छोड़ दो और अकेले काल को ले लो या अकेले भवितव्य को ले लो, तो हो गया नियतवाद, वो एकांत मिथ्या तो हुआ। जो क्या कहते हैं, निर्जमी पुरुष मिथ्या नियति के आश्रय से अकेले उसने नियत को अकेले को पकड़ा और पुरुषार्थ को छोड़ दिया। पुरुषार्थ का तिरस्कार करते हैं, पुरुषार्थ को उड़ा ही देते हैं कि जब होना है तब होगा, तो पुरुषार्थ वो बाकी सब काल लब्धि होना ये सबको माना नहीं, अकेले नियति को माना। पर अनेकांत बुद्धि यानी जैन सम्यक दृष्टि जी इस सिद्धांत को जानकर सर्व बाह्य व्यापार से विरक्त हो एक ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थिति पाती है, पाते है कहिए ना। अनेकांत बुद्धि, अच्छा बुद्धि को लिया, बुद्धि जो है वो क्या करती है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में भाव में स्थिति पाती है। यानी अनेकांत बुद्धि है जिसने सम्यक निर्णय कर लिया है, वो इस सिद्धांत को जानकर सभी अन्य व्यापार से विरक्त होकर, यानी व्यापार क्या कर रहा था वो, दूसरे का कार्य कर रहा था ना। देखो ये बुद्धि को लिया है, बुद्धि पर का कुछ कार्य नहीं कर रही थी, जड़ का तो कार्य कर ही नहीं सकती है, परंतु वो उपयोग जो बाहर भटकता था, तो सर्व बाह्य व्यापार, व्यापार यानी जो उपयोग रूप कार्य होता है उसको कहते व्यापार। यानी बाह्य में जो उपयोग भटकता था उसको वहां से हटकर वो सहज हो जाता है, कि जो अनेकांत बुद्धि है, अनेकांत स्वरूप का निर्णय करने वाला जो ज्ञान है वो क्या होता है, इस सिद्धांत को जानकर, ये सारा ही क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत जब उसके ख्याल में आता है बराबर, तब सभी बाह्य व्यापार से विरक्त होकर, यानी उपयोग बाह्य से समेट कर, ये व्यापार यानी वो परद्रव्य का व्यापार, ये व्यापार धंधे वाली व्यापार की बात नहीं है, हा? एक ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थिति पाती है, यानी बुद्धि जो उपयोग में वो राग रूप हो रही थी, अन्य अन्य भाव रूप पलट रही थी, वो अपने को मान भी रही थी वैसा, तो यहाँ अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में वो स्थिति होती है, यानी स्वयं ज्ञाता दृष्टा हो जाती है। बुद्धि यानी ज्ञान, अनेकांत बुद्धि है अनेकांत को जानने वाला ज्ञान। यानी जो पर्याय अनेकांत का स्वीकार करती है, जिस ज्ञान में निर्णय हो गया, वो अभी ज्ञान क्या करेगा, वो ज्ञान स्वयं ज्ञाता दृष्टा रूप हो जाएगा। पहले क्या कर रहा था, पहले राग में उलझ रहा था और अपने को राग रूप मान भी रहा था, और परद्रव्यों का जड़ का मैं करता हूँ ऐसा भी मान रहा था। अब ये सारी बुद्धि छूट गई उसकी, ये मान्यता छूट गई, वहां बुद्धि में मान्यता सहित वाला ज्ञान लेना, सही मान्यता सहित वाला ज्ञान है ये। बुद्धि में लेते ना, बुद्धि में तो सही बुद्धि, अनेकांत बुद्धि ने सही मान्यता सहित वाला ज्ञान ऐसा ले लो। अभी सम्यक दृष्टि तो होगा उसी समय जब ये उपयोग अन्यत्र से हटकर अपने वो निर्णय किया ना उसने, वो सिद्धांत को जाना, सिद्धांत का सही निर्णय किया, तब ये उपयोग बाहर से हटकर अपनी ओर आ गया, उसको हटाना नहीं पड़ा। चलो अभी अंदर ले चलते हैं, बाहर बहुत भटक रहा है, ऐसी बात नहीं है। जब सिद्धांत वो सही ख्याल में आ जाता है तो उपयोग अपने स्वभाव को पकड़ लेता है। पेज नंबर 50 से। देखो स्वद्रव्य परद्रव्य हमने देखा, स्व में कौन कौन आता है, वो सब स्वभाव वगैरह सारे वो चार लेना, स्व में आते हैं वो। निमित्त में भी देखो, निमित्त एक परद्रव्य है, और उपादान में भी हम त्रिकाली उपादान है, वो तो स्वभाव हुआ, उसमें सारे घटित करने उसके। हाँ, अभी जैसे पूर्व पर्याय करिए ना, पूर्व क्रमवर्ती पूर्व पर अंतर पूर्व क्रमवर्ती क्षणवर्ती पर्याय पूर्व पर्याय, तो अकेले एक ही पूर्व पर्याय नहीं लेगा, उसके भी पूर्व में थी, उसके भी पूर्व में थी, उसके भी पूर्व में थी, ये पूरा पर्यायों का सिलसिला जिस विधि से कहते ना, वो विधि में ये सारे ही आते। तो अभी स्वभाव है, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ में भी एक एक समय का वो पुरुषार्थ निश्चित है कि नहीं, पहले वो आया यहाँ सुना शास्त्र सुना, फिर आगम से सब जाना, ये सारी एक एक पर्याय उसमें लेना, और फिर अपने मन में विचार करने लगा तो अपने युक्ति से उसने उसका सही निर्णय किया, ये सारे ही पूर्व पर्याय में आ गए। ये त्रिकाली उपादान और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, उसमें ये सारे पूर्व पर्यायों का पूरा क्रम लेना उसने, और फिर जो होनी है उस समय की योग्यता कह लेते हम, वो समय में वही पर्याय होने वाली थी तो उसको हम भवितव्य में लेते हैं, तो ये सारा ही उसमें ले सकते, उपादान और निमित्त में घटा सकते उसको। फिफ्टी सेवन पेज पर कार्योत्पत्ति में पंच कारणों के समवाय को सम्यक घोषित करते हुए, कार्योत्पत्ति यानी कार्य की उत्पत्ति यानी किसी भी पर्याय का होना, उसमें पांच कारणों के समवाय यानी पांच कारणों का इकट्ठा होना, समवाय ने वो सब जुड़ जाना एकत्रित होना, तो पांच कारणों के समवाय को यानी समूह को, समवाय शब्द कहाँ आया था, हाँ देवेंद्र भाई, समवाय किसे कहे, हाँ द्रव्य पंचाध्यायी में, पंचाध्यायी में हमने जो द्रव्य के 14 नाम गिनाए थे, द्रव्य तत्व सत्व सत्ता सत् वस्तु वगैरह वगैरह, वो सारे हाँ पदार्थ अर्थ सामान्य देश है धर्मी है समवाय और समुदाय, वहाँ तो आपने रख के सुनाए थे कि नहीं सुनाए थे, नहीं अच्छा इसीलिए रह गया। देखो तो समवाय वहाँ कहा था, समवाय यानी समूह, तो यहाँ तो वो यहाँ तो द्रव्य रूप से अर्थ नहीं लेना है, पांच कारणों का द्रव्य ऐसा नहीं लेना, कलेक्शन समूह, पंच कारणों के समवाय को सम्यक घोषित करते हुए आचार्य सिद्धसेन सम्मयी सूत्रम यानी सन्मति सूत्र में लिखते हैं, कालो सहावणी पूवकयम पुरिस कारणे गंता मिच्छन्तं तेजेवौ समासो होन्ति सम्मत्तम्। काल स्वभाव नियति पूर्वकृत यानी निमित्त, जिसको हम कर्म भी कहते ना, और पुरुषार्थ, इन पांच कारणों में से किसी एक से कार्योत्पत्ति मानना एकांत है। देखो ये बात आ गई, समवाय पांच होते हैं किसी भी कारण की उत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति में, उसमें से किसी एक को ही मानना अन्य को नहीं मानना, इसको कहते हैं एकांत, यानी मिथ्यात्व का भेद है वो एकांत वाला, वो एकांत है मिथ्यात्व है, और इनके समवाय से यानी सारे ही इकट्ठे होकर कार्य करते हैं, इनके समवाय से कार्योत्पत्ति मानना अनेकांत है सम्यक्त्व है। ये पांचों ही कारणों का जैसा का वैसा स्वीकार करना यही अनेकांत है, और उसे वो अनेकांत का स्वीकार कहो, क्रमबद्ध पर्याय का स्वीकार कहो, या सर्वज्ञ की निर्णय कहो, एक ही बात है। प्रवचन सार में आता है ना कि जो अरिहंत को द्रव्य से गुण से और पर्याय से जानता है यानी वो सर्वज्ञता का निर्णय करता है, वही समय उसका समय दर्शन का है। पहले से अरे अरिहंत के सामने देखकर अपना समय दर्शन कैसा होगा, परंतु जब निर्णय करता है तो उसको सर्वज्ञता की पहचान हो जाती है, उसी समय वो अरिहंत के विकल्प वहां रहते ही नहीं है, सर्वज्ञ का जब निर्णय करता है तो सर्वज्ञ स्वभाव ही अपना निर्णय हो जाता है, और उसी समय वो समय इतना अल्प है उसी समय वो समय दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो कहीं से भी क्रमबद्ध पर्याय की ओर से जाओ, वस्तु व्यवस्था का जब सही निर्णय हो जाता है तो ज्ञान स्वभाव पर आ जाती है दृष्टि, अपने ज्ञाय को पकड़ लेता है। ये वस्तु स्वरूप जानना है वस्तुओं को जानने के लिए नहीं, पर वो जाने किसने ये वस्तु स्वरूप, सारा पूरा विश्व का स्वरूप किसने जाना है, तो ज्ञान ने जाना है। तो ज्ञान ने वस्तु विश्व की तरफ देख देख कर जाना है क्या अपनी ओर देख कर जाना, तो अपनी ओर अपने ही स्वभावगत योग्यता से, स्वभाव में ऐसी योग्यता है कि वो केवल ज्ञान रूप से वो पैदा हो जाए, वहाँ स्वभाव ही ऐसा है। तो स्वभाव मेरा भी ऐसा है, अभी वर्तमान में अल्प ज्ञान प्रकट है परंतु पूरा का पूरा स्वभाव अभी विद्यमान है, तो वो स्वभाव को ज्ञान पर्याय प्रकट पकड़ लेती है और सहज स्वानुभूति हो जाती है, समय दर्शन प्रकट हो जाता है। यही तो अनेकांत है। देखो पंच समवायों की चर्चा पद्म पुराण में इस प्रकार है, काल कर्मेश्वरो दैवम स्वभाव पुरुष क्रिया नियतिर्वा करोत्येवम विचित्रम प्रसमीहितम। उक्त छंद में राम को वनवास और भरत को राज्य दिए जाने पर जनता अपने भाव व्यक्त कर रही है। ये पद्म पुराण में लिखा है। देखो ये जनता के भाव हो या राम के हो या उसमें से तत्व ज्ञान सिखाया जाता है। क्या कहते हैं कि ऐसी विचित्र चेष्टा को काल कर्म ईश्वर दैव स्वभाव पुरुष क्रिया अथवा नियति ही कर सकती है, और कौन कर सकता है। इस वाक्य को फिर समझाया है। इसी बात का स्पष्टीकरण करते हुए जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार लिखते हैं। अभी यहाँ कौन कौन से जो शब्द हैं उसको एक एक शब्द को समझाएंगे। यहाँ कौन कौन से लिए थे, देखो ऊपर काल कर्म ईश्वर दैव स्वभाव पुरुष क्रिया अथवा नियति, यानी वो लोग क्या कहेंगे, अरे कर्म ऐसा ही है, ईश्वर ने ऐसा ही किया, अरे उसका दैव ऐसा ही था, क्या करे, ऐसे बोलते हैं ना वो लौकिक भाषा में। क्योंकि ये जो लोग ऐसा कहते हैं वो लोगों की भाषा तो लौकिक होगी, तो उसको किस में किसको लेना, काल किसको जानना दैव किसको जानना, इसकी बात करेंगे। काल को नियति में, कर्म व ईश्वर को निमित्त में, और दैव क्रिया को भवितव्य में गर्भित कर देने पर पांचे बातें रह जाती है, यानी वही पांच समवाय रह जाते हैं। यानी भाषा तो यहाँ काल की कर्म की ईश्वर आदि की अथवा नियति क्या है ना, ये नियति में तो पांचों ही आ जाते हैं, या अकेले भवितव्य को भी जो लौकिक जन नियति कह सकते हैं, जो नियतिवाद वाले जो है वो नियति में पांचों को नहीं लेते, वो अकेले भवितव्य को लेते, जिसको होनहार भी कहते हैं ना। देखिए फिर पढ़ती हूँ, काल को नियति में, कर्म व ईश्वर को निमित्त में, और दैव व क्रिया को भवितव्य में गर्भित कर देने पर पांच बातें रह जाती है। कौन कौन सी पांच, देखो स्वभाव निमित्त नियति पुरुषार्थ और भवितव्य। हाँ पुरुष है पुरुषार्थ, ऊपर पुरुष लिखा था ना वो पुरुषार्थ। हाँ यह काल लब्धि लेना। इन पांच समवायों से समवेत ही, यानी इनसे सहित ही, समवेत यानी सहित, यानी इन पांच समवायों से समवेत ही कार्य व्यवस्था की सिद्धि है, ऐसा प्रयोजन है। कौन सा, एट अ टाइम होते हैं। हाँ ना, एट अ टाइम होते हैं। जैसे इस विश्व में कितने द्रव्य हैं, छह द्रव्य, तो उनका ऑर्डर क्या है, भाषा। वैसे यहाँ है तो पांच, भाषा में एक एक का कथन करेंगे हम, तो हम किसको मुख्य करेंगे ये समझने के लिए उसको पहले पीछे बताएंगे। तो स्वभाव तो निमित्त को हम बाद में लेंगे, पहले तो स्वभाव को ही रखेंगे ना, जैसे त्रिकाली उपादान की चर्चा करते पहले, फिर उसको हटाकर फिर वो त्रिकाली उपादान तो हमेशा रहता है, फिर वो क्षणवर्ती को लेंगे, और फिर उस समय की पर्याय की योग्यता को उसी क्रम से सिखाएंगे। वैसे यहाँ पहले स्वभाव को रखेंगे, स्वभाव को रखेंगे तो स्वभाव तो है, फिर स्वभाव ने उपादान है, उस समय निमित्त भी होता ही है, फिर निमित्त को रखो, परंतु निमित्त से कुछ कार्य होता ही नहीं है, तो पुरुषार्थ से ले लो। पुरुषार्थ से होता है तो फिर जो कार्य होता है उसी को तो भवितव्य कहते हैं, और जिस समय हुआ वही तो काल लब्धि हुई। तो समझने के लिए उसके ऑर्डर बनाइए, वो पांचों का इकट्ठा है, ऐसा नहीं है पहले आया बाद में यह, ऐसा नहीं है पहले स्वभाव था बाद में निमित्त आया इसलिए यहाँ पुरुषार्थ किया, ऐसी कोई बात नहीं है। पांचों ही समुदाय तभी कहते हैं कि सब इकट्ठा एक ही समय की बात है, समुदाय है। अब इसमें जो स्वामी जी का स्पष्टीकरण इसी के ऊपर है वो हम कल पढ़ेंगे। क्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नो सदा देश हो।